यं कलाकय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिंहभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने कुर्वद्विषेण हे कृष्णकरुणासिन्ध दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विषभांशुते प्रणमामि हरिश्री आदेवी कातुभरगदगदयाश्च जातिपत्रभूविदण्डवतोर्भकार्ति अस्य प्रसरागमभ्रस्य जनस्य देव गन्धर्विके तव गणे गणनं अङ्गश्यामलिं सदाभिरभितो मन्दिकचण्डीपरं जड्डं जागुचरोति संविदन्तं पस्तम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितोज्वलभिं ध्यायेताम् भक्त्याविहीनापराधलक्षे चित्ताक्षकामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय सदभक्ताय तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे कङ्गणां चरणं श्री राधारमण जी के गोस्वामियों का बहुत आभारी मैं सब प्रकार से अयोग्य होने पर भी जहाँ मूर्धन्य विद्वान यहाँ पर रहते हैं स्वयं गोस्वामी लोग बड़े विद्वान लोग हैं इस पर भी मैंने भक्ति विनोद ठाकुर के आत्मचरित्र में मैंने देखा मधुसूदन गोस्वामी जी के बड़े आभारी हो गए हमारा सप्त गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय इन लोगों का आभारी है जब जब भक्ति विनोद ठाकुर जी को और जगत गुरु नित्य लीला परिश्रम विष्णुपाल कृष्ण भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी को कोई भी आवश्यकता हुई सारा बंगाल का समाज उनका विरुद्ध हो गया उस समय में इन के पृष्ठपोषक राधारमण के ये शिष्य मधुसूदन गोस्वामी जी मैं सुनकर के और भी अभी बोध हुआ तब हमारे परम पूजनीय गौरकृष्ण जी और पद्मनाथ जी कह रहे थे कि श्रीमद् मधुसूदन जी की गोस्वामी जी की डायरी में ये सब लिखे हुए हैं कभी देखूंगा ये सब बड़ी अच्छी चीजें हैं तो मैं न तो विद्वान हूँ न कथावाचक हूँ गुरु जी ने मुझे कृपा करके कुछ साधारण भाव से भक्ति साधन करने के लिए आदेश दिया है, थोड़ा सा प्रचार करने का भी आदेश दिया, प्रचार समय नहीं। तभी हमारे पूज्य विशंभर जी गोस्वामी बहुत ही मुझे स्नेह करते हैं, वैसे भी हमारे विद्वत वर्ग बहुत किसान की मुझे बहुत स्नेह करते हैं, इसलिए उनको यहाँ पर श्रीराधा मंदिर की कृपा ग्रहण करने के लिए मुझे अवकाश मिला। मैं कुछ पाठ प्रवचन करने के लिए नहीं आया, मैं कुछ निवेदन करने के लिए आया। इच्छा थी जो सुनूं तो उस सुजोग तो नहीं हुआ। मैं विशेष करके यहाँ श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की महिमा और उनके श्री चैतन्य महापुरुष जी की जो करुणा वर्षित थी उसे बहुत अभिभूत हूँ। उन्हीं का ये निदर्शन है चैतन्य महापुरुष जी की करुणा का और गोपाल भट्ट गोस्वामी की प्रेम भक्ति का श्रेय है कि श्री राधा रमण जी यहाँ पर प्रकटित है। विशेष करके यहाँ की सेवा परिपाटी इतनी सुंदर है, भव्य है कि यहाँ के हमारे श्री गोविंद जी, गोपीनाथ, मदन मोहन इत्यादि प्राचीन श्री विग्रह, ऐसा मन में होता है कि शायद सेवा के अभाव में यहाँ से प्रकट रूप में दूर चले गए, कोई जयपुर में चले गए, कोई नाथद्वारा में चले गए, कोई कहीं, किंतु हमारे राधा रमण जी अनुग्रह करके जी रहे हैं, इन लोगों की सेवा की परिभाषा दी है। उन्हीं की करुणा की मैं दो एक बातें मैं यहाँ पर निवेदन करना चाहता हूँ। गोपाल भट्ट पर कैसे श्री चैतन्य महापुरुष की करुणा, हमारे गोस्वामी ने उसको किस रूप में ग्रहण किया। श्री चैतन्य चैतामृत में कृष्णदास व्यास गोस्वामी ने सिद्धरूप गोस्वामी का विदग्ध माधव का मंगलाचरण का वह श्लोक जो लिखा है उसी के ऊपर मैं दो एक बातें कहूंगा। उन्होंने लिखा है अनर्पित चरिम किराज करुणी आवते नाम फलो समर्पयितुम उन्नतोज्ज्वल रसानु का भक्ति हरिहतू शुल्क रूप कदम्ब संगीत सदा हृदय संगरे सुरुत ले प्रतिवत सके मंद। ओह चैतन्य महाप्रभु की करुणा का क्या कहना, इनकी अपार करुणा है। ये राधा कृष्ण स्वयं दोनों विलिप्त हैं, करुणया व तिरणा कलो, ये कृष्ण स्वयं गोलोक वृंदावन नाम से गोकुल ब्रज से करुणापूर्वक अवतीर्ण किया। परम करुण कृष्ण, परम रसिक कृष्ण, परम करुण, यही हेतु एक ही हेतु कृष्ण लीला है। कृष्ण बड़े रसिक है और साथ साथ में करुणा के धन समुद्र है। इन करुणा के घन समुद्र होने के नाते और परम रसिक शेखर होने के कारण चैतन्य महाप्रभु अथवा श्री कृष्ण ही अपने ब्रजधाम के साथ अपने परिकरों के साथ ब्रजधाम से इस भूतल पर प्रवेश हुए। कयो करुणा की रसद पालन के लिए चैतन्य महाप्रभु के बहुत से कारण हैं आने का जगत में, किंतु उनमें से प्रधान हमारे कृष्णदास प्रसाद गोस्वामी ने चार कारण हुए, जिसमें एक मुख्य एक गौण, मुख्य में भी दो गौण मुख्य गौण प्रधान और प्रधान में भी गौण प्रधान और प्रधान में प्रधान, जिसमें उन्होंने बतलाया धर्म की रक्षा के लिए, दुष्कृति का विनाश करने के लिए, दुष्कृतियों को विनाश करने के लिए, धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए, युग धर्म का प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु और उसमें दूसरा बतलाया ये अनतिचरिण किराज करणी आवते अनुग्रह करके उन्नत उज्ज्वल स्वभक्ति श्री प्रदान करने के लिए। तीसरा कारण द्वैताचार्य का तुलसी दल लेकर समर्पण कर आप यदि नहीं आएंगे तो मैं विश्व का संहार कर दूंगा, आपके द्वारा ही ये जगत में धर्म की प्रतिष्ठा होगी, स्वभक्ति का प्रचार होगा, युग धर्म का प्रचार किया होगा, दूसरों के द्वारा संभव कर दूंगा। इन पाषंडों को विशेष रूप से तत्सामयिक पाषंडों की अवस्था देखकर अत्यंत विभव उठे भाव में और तुलसी दल और जल देकर के भगवान को आवेदन किया, उनका सिंहासन ठीक था। कब आते आते तो जरूर युद्ध धर्म के लिए नाते हैं, कब आते किंतु उनका उनका धर्म के दंड सुनकर प्रार्थना सुनकर को झट उपस्थित हो जाए। और चौथा कारण अपने लीला माधुरी का आस्वादन करने से राधाया प्रणय महिमा कितनी तो आई गोबा इत्यादि कृष्ण बड़े सुंदर बड़े मधुर उनके पति राधा जी का प्रणय भाव क्या है उनका जनक माधुरी लीला माधुरी बेन माधुरी गुण माधुरी ये जो विशेष चार मधुरियां हैं उनको श्रीमती राधिका जी कैसे आस्वादन करती हैं और इन माधुरियों को आस्वादन करके उनको कौन सा दुख होता है उनकी दीदियों के लोभ से श्री कृष्णचंद्र जी राधा जी की अंगकांति और भाव ये दोनों लेकर के जरूरत में और इसमें मैं पहले बतला रहा था करुणया भक्त न करो। कृष्ण लीला में उन्होंने ब्रज में आकर दक्ष सख्य बात्सल्य मधुर इन रसों का आस्वादन किया किंतु उनकी राधा जी की कृष्ण के प्रति कैसे प्रणय मांगा है और ये प्रणय क्या है प्रेम स्नेह मान प्रणय अथवा प्रणय मान ये प्रणय कहता है। प्रणय में एक ममत्व की जरूरत होती है सेवा में भक्ति भाव ही ये ममत्व जिसका जितना ही ममत्व अधिक रहेगा कृष्ण के प्रति उतना ही इन चीजों को वो समझ सकेगा अनुभव कर सकेगा। ममता नहीं है प्रेम होगा ऐसा नहीं ममता अतिशय है उनकी तरह ममता उसमें अत्यंत प्रगाढ़ जितनी होगी उतना ही वो रस श्रेष्ठ होता है। चैतन्य महाप्रभु जी अतः कृष्ण ने देखा मैं प्रेम का विषय हूं और सब प्रेम के आश्रय हैं उन समस्त आश्रम में राधा जी सबसे श्रेष्ठ आश्रय हैं। लागनी की सार लागनी का सार प्रेम प्रेम का सार महाभाव महाभाव का स्वरूप माधव महाभाव ही श्रीमती राधिका जी का है। और फिर जब तक इस भाव को मैं लेकर के जगत में नहीं आऊंगा तब तक इसको आश्वासन नहीं था। यहां पर कुछ वक्तव्य यह है हमारे कुछ महानुभावों का यह विचार है गोलोक गोकुल ब्रज में राधा जी का पार्थिव भाव नहीं या गोपियों का पार्थिव भाव नहीं केवल इस जगत में उसको लेकर के प्रकट होते हैं और इस जगत में अश्रावण करते हैं। कुछ मान्यताओं का ऐसा भी किया है, किंतु भक्ति विनोद का उन्होंने अमृत प्रवाह में ऐसा लिखा है कि ऐसा विचार होने पर भी यह विचार जरा ठीक नहीं चलता। जो चीज गोलोक गोकुल में नहीं है वो इनकी प्रकट लीला में कैसे सुन को पता हो सकता है। इसलिए यद्यपि ये कहा गया वैकुंठ आदि से नहीं, ये सब लीला प्रचार वैकुंठ इत्यादि में इन लीलाओं का प्रचार नहीं, यहां तक कि गोलोक में भी इस लीला का अधिक प्रचार नहीं, प्रसार प्राप्त नहीं। विश्वनाथ चौपति ठाकुर जी ने अपने किसी श्लोक के किसी का निर्भर बतलाया है, यद्यपि गोकुल के गोलोक के अंतर में गोकुल है किंतु गोकुल का वैभव गोलोक है। गोलोक में स्वकीय और ऐश्वर्य भाव कृष्ण का नित्य किशोर वहां है। विश्वनाथ चौपति ठाकुर जी लिखते हैं नित्य किशोर है वहां, किंतु उसका उसमें उसमें स्वकीय भाव और उसमें कुछ ऐश्वर्य भाव, और गोकुल में जो उसके हृदयस्थ है जिस गोकुल का या गोलोक वैभव, उस गोकुल में ब्रज में या वृंदावन में तीन लीलाएं हैं, बाल्य लीला और गंड लीला और किशोर, तीनों लीलाएं वहां पर गोल वैकुंठ में तो बात ही किया है, वहां का केवल ऐश्वर्य लीला है, वहां पर नारायण इत्यादि का जन्म इत्यादि नहीं है, न तो वहां पर और कोई रासलीला इत्यादि है। इसे चैतन्य महाप्रभु जी का या कृष्ण का इन लोगों से परिचित है। तो गोलोक में गोलोक गोलोक से भी उसका हृदय स्थल उसका मूल जो ब्रज गोकुल या वृंदावन है, इसमें कृष्ण की बाल्य लीला है। इसलिए नंदनम भक्तों का वहां पर भाव भी है, कृष्ण भजेंद्र नंदन श्याम सुंदर है, और अखिल भगवान ब्रजेश तमय सद्दाम वृंदावन। गोलोक में वो एक गारखाई है, प्राचीर है, उसमें ये सब लीलाओं का वहां पर इस तरह का तात्पम्य और वैशिष्ट रश्मय भाव वहां पर प्रकटित नहीं है, किंतु गोकुल में ये सब लीलाएं हैं। इसको जानने के लिए ये भी जानना उचित है कि ऐश्वर्य लीला किसको कहते हैं, माधुर्य लीला किसको कहते हैं। भक्ति विशेष करके प्रेमा भक्ति प्रेम प्रेम में दो चीज होती है, विशेष करके ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति जो स्वभावतः अनुराग है, जिसको रागात्मी का फल जल कहते हैं, उनमें एक संबंधात्मी का भक्ति पाक प्रेम और दूसरा कमात्मी का, ये दो चीजें हैं। जब तक ये संबंध नहीं रहता इन तीनों में, दास्य सब से बात करें इनमें संबंध संबंधात्मी का ये भाव है, इसमें संबंध की मर्यादा को तोड़ करके कृष्ण कुछ भी नहीं करते या उनके सेवक भी नहीं करते, उस मर्यादा में बंधे होते हैं। इसलिए संबंधानुगा में जो कृष्ण सेवा की वासना होती है वो मर्यादा के में बंधी हुई, वो संबंध से मर्यादित होती है। ये लोग अपनी अपनी मर्यादा संसार में कृष्ण की सेवा करते, उसका अतिक्रम नहीं कर सकते, और कामात्मिका में कृष्ण सेवा की वासना के अनुकूल या अनुगत होता है संबंध, या संबंध की मर्यादा होती है, उस मर्यादा के बंधन में ये लोग नहीं रहते। जैसे गोपियों ने पति सुतानुमय भ्रातृ ब्रह्म भवान अति विलंघते अंत अच्युता होता, ये सबको बंधन इत्यादि के मर्यादाओं को वेद धर्म लोक धर्म लज्जा शील धैर्य सबको तोड़कर, इनकी हथकड़ी देवियों को तोड़कर और कृष्ण से मिलने के लिए रात में उपस्थित। इसलिए कृष्ण ने इसलिए कहा न पारे हम निरबद्ध संजु जाए, मैं गोपियों का आयु कभी भी नहीं चुका सकता, अनंत काल की आयु होकर से भी देता हूं जैसी आयु पा सकते हैं। हे गोपी हे देवियों, मैं आपका दिन से कभी भी पूरी नहीं, मैं सदा के लिए आता हूं। कृष्ण ने कहा जो कुछ मांग लो, मैं गोपियों ने कहा जो कुछ दे दो, तो अब बरमांगने के लिए भी कहने पर गोपियां क्या मांगेंगी, आप लोग से ही मांगेंगी, अपनी सेवा दे दीजिए, इसलिए मैं कभी भी पूरी नहीं। दूसरी बात, इसलिए भी पूरी नहीं हो सकता, गोपियां एकनिष्ठ हैं और कृष्ण कहते हैं बहुनिष्ठ। कृष्ण ने गोपियों से प्रेम करने के लिए अपने भाई माता पिता बंधु या किसी भी एक तुच्छ से तुच्छ भक्त को भी नहीं छोड़ सकते, उसमें बंधे ही हैं। ये जैसा ताम बजा लेकिन उसमें बंधे ही हैं, किसी भी भक्त को किसी के लिए नहीं छोड़ सकते। और गोपियां पतियों को छोड़ दिया, पिता माता को छोड़ दिया, सास सासु को छोड़ दिया, लोक धर्म देव धर्म मर्यादा जितनी प्रकार की मर्यादा है लोक लीजा इत्यादि सबको तुच्छ के रूप में देता है और उनको छोड़ दिया। कृष्ण ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं, वो बहुनिष्ठ उनको रहना ही होगा, किंतु गोपियों को नहीं। यदि किसी को छोड़ दिया कृष्ण ने, लाखों को गोपियों में ही केवल ले लिया जाए, यदि सब गोपियों को छोड़ करके राधा जी के पास में रहते हैं, कहते हैं कि आपके अतिरिक्त हम किसी के पास नहीं जाए, तो बाकी कैसे हो जाए। इसलिए तो ये सब जो लीलाएं हैं ग्लोक के अंत प्रविष्ट में प्रकोष्ठ में, ये सब लीला वहां पर नित्य हैं। यदि वो लीलाएं वहां नहीं है ये सब और कृष्ण वहां पर अर्थात साधन नहीं करते हैं तो इस लोक में कैसे होगा, क्योंकि लिखा है कि कृष्ण जी ये सातवें में चतुर्युग में द्वापर के अंत में ब्रज प्रहित है या प्रकाश, ब्रज को लेकर के यहां पर आए, परिसरों को लेकर के आए, ब्रज से लेकर के आए, तो जत ब्रज में ही ये पार्थिव भाव और ये सब रस नहीं है, माधुर्य रस नहीं है, केवल जगत में ही आसाधन करने के लिए महाप्रभु के रूप में आए या कृष्ण के रूप में आए, तो ये कैसे संभव है। इसलिए वहां पर समस्त लीला है, उस लीला को ले करके इस जगत ने कुछ समय के लिए इस वृंदावन में बढ़ाया, वहां पर भी लीला चल रही है, यहां पर भी लीला चल रही है, ऐसे में जो वहां पर खाली हो गया वो आ गया। किस लिए आए, करुण या अवतीर्ण बलू प्रजकाजा रास्ता साधन जो है, यहां के जीवों को भी कुछ दिया जाए, कुछ आस्वादन भी किया जाए। आस्वादन करने के लिए एक विशेष बात, वो देने की बात नहीं है, इसका हम पीछे विशेषण करेंगे, जो देने के लिए चीज है उसी को लेकर के आए, वो क्या चीज है इस श्लोक में वर्णन करते हैं। करुण या अवतीर्ण करुणाचल का हृदय द्रवित हो गया और इस जगत में आए, महाप्रभु जी की करुणा की अवैशिष्ट जितने अवतार हो गए हैं सभी अवतारों से रामचंद्र इत्यादि की तो बातें क्या, ये स्वयं तत्वतः एक होने पर भी रस वैचित्री के माध्यम से इन लोगों में भी भगवत्ता में भी तारतम्य है। जैसे महाप्रभु का की करुणा जब हम विचार करते हैं तो स्वयं कृष्ण के प्रकट काल में उनकी जो करुणा प्रकाशित प्रकट नहीं हुई वही कृष्ण के गौ रूप में वो करुणा प्रकाशित हुई। इसलिए करुणा से क्या है, कैसी करुणा है देखिए, कृष्ण के समय में कृष्ण ने बड़े बड़े असुरों का संहार किया, उनको मुक्ति भी दी, उतना जैसी राक्षसी को केवल बेश मात्र से माता का बेश बनाया और कपट देश में लेकर के उनको दूध पिलाने का भान किया, यद्यपि उसका उद्देश्य था उसको मारने के लिए, किंतु उसे धातु किसान गति दे दी। ये किसी भी लीला में ये कभी सभी संभव करने गई और दूसरे अवतार में, यहां तक कि कृष्ण ने लताओं को भी गुलमों को भी कृष्ण का अतिरिक्त किसी भी अवतार में यह प्रेम नहीं दिया गया, सबको उन्होंने प्रेम दिया। किंतु कृष्णचंद्र जी ने वो नहीं करना की जो महाप्रभु की करना है, यही हम लोग दिखला रहे हैं विचार आज क्या ये विचार दिखला। असुरों को उन्होंने मारा, गतियां दे दी, किंतु उनको ये नहीं उस जन्म में उनको अनुभव न हो कृष्ण ने हमारे ऊपर में दया की, पुत्रों को मार, पुतना को मारा, आधार को मारा, बकार को मारा और सबको मारा। उनके जितने परिवर्तन के लोग थे उन लोगों ने किसी ने अनुभव नहीं किया उस जीवन में जब कृष्ण ने दया ही पर की है। जब पुतना मरी तो उसका भाई बकी, बकासुर और अघासुर ये दोनों उसके भैया हैं, बदला लेने के लिए चुनी और कृष्ण पर वैसे ही अघासुर बन करके और बक बन करके उनका पान संभार कर दिया देश में भर कर। उसी तरह से महाभारत युद्ध में भी देखा जाता है, सब लोगों ने किसी ने भी उस जीवन में उनकी करुणा की उपलब्धि नहीं की और महाप्रभु पर गया। एक तो महाप्रभु जी ने किसी को प्राण से संघात नहीं किया, दूसरे दूसरे अवतारों में राम आदि अवतारों में उन्होंने ध्वंस बाण और चक्र और दूसरे तीसरे तीसरे लोगों को असुरों का संघात किया, महाप्रभु जी ने किया, उनका आत्मिक भाव हरण कर दिया, इसलिए वो हरी और साथ साथ उसने प्रेम की बीज बो दी और लोगों ने उसी जन्म में अनुभव किया कि चेतन महा के प्रभु के हमारे ऊपर में कैसी कृपा है। सबसे पहले जगाई मधाई को लीजिए, वो लोग पशु से लीजिए, महाप्रभु जी ने उनका वध नहीं किया, बस हृदय से लगा लिया, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कहते 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 हरी बोल करते करते प्रेम में अभिन होकर रुने लगे और चरणों में जुट गए, जगत को पवित्र बनाने वाले बन गए। महाप्रभु की करुणा की उपलब्धि की उसी जन्म में रूप सनातन के ऊपर में उन्होंने करुणा की, गोपाल भट्ट जी के ऊपर में उन्होंने करुणा की, श्रीमल्ल भट्ट और प्रबोधानंद सरस्वती पर उन्होंने कृपा की, वेंकट भट्ट पर कृपा की, उन लोगों ने अनुभव किया। महाप्रभु जी दक्षिण देश में गए कावरी के तट पर, चार महीना वहां रहे, पहले से मंदिर में गए, जबकि वो नृत्य करने लगे आवेश में, सब लोग देख करके आश्चर्यचकित हो गए, ऐसा तो हमने सन्यासी और किसी को देखा नहीं, जो लोग थे जब देख रहे थे वो भी उनके साथ साथ में मिलकर तो भी नृत्य करने लगे, हरी बोल करने लगे। विशेष करके वहां के ये तीन भाई और उनके पुत्र एक गोपाल भट्ट जी उस समय बहुत छोटे थे, 11 वर्ष के थे, हमारे गौकिशोर पूज्यपाद गौकिशोर दास कृष्ण जी गोस्वामी ने बहुत ही सुंदर गोपाल भट्ट का जीवन चरित्र पर और कुछ गोस्वामियों का उसमें परिचय है, बहुत ही सुंदर एक ग्रंथ लिखा है, आप लोग देखें। इसमें महाप्रभु जी की करुणा, उनका अवदान, गोपाल भट्ट गोस्वामी का श्री महत्ता इत्यादि के संबंध में उन्होंने बहुत बुरी बुरी लिखा है, बहुत ही सुंदर पुस्तक, मैंने सब पढ़ा काम से देखा, मैं भाव में जोर हो गया कि बहुत यथार्थ में ये लोग विद्वान देखते हैं। महाप्रभु जी वहां गए, देखा तीन भाइयों ने उन्होंने आकर्षित हुए। महाप्रभु जी ने ये स्थिर किया कि बच्चा का चार साल में और कहीं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा। इससे बात तो वहां खड़ गए, कावड़ ने स्नान किया, दर्शन कर लिया। इन लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ पर आज के साथ नहीं किए रिक्शा हमारे यहाँ मल्ल भट्ट प्रधानमंत्री और बिल्कुल बिल्कुल ये सब बड़े बड़े विद्वान थे, अगाध विद्वान, सिख संप्रदाय के बहुत अगाध विद्वान थे। विशेष करके वेदांत शास्त्र में जो भक्ति का वेदांत वेदांत भक्ति शास्त्र है इसमें पूर्ण पारंगत थे। वैसे लेखक भी थे, सुसाहित्य संस्कृत के बहुत बड़े भारी विद्वान धुरंधर और सिद्धांत में निपुण थे। महाप्रभु जी को अपने घर में रखा, महाप्रभु जी का आसन करते थे, प्रतिदिन निकाल दर्शन करते थे, श्रीरंगम में आया था मंदिर में और महाप्रभु जी वहां पर है। महाप्रभु चुपचाप बैठने वाले नहीं है, कुछ न कुछ तब प्रसन्न करेंगे, उसी के लिए तो आए हैं, इन चारों को पूजा करने के लिए श्रीरंगम में गए। उन्होंने एक दिन पूछा, देखा क्या इन तीनों भाइयों में है तो बड़े विद्वान। कुछ लोग ये भी कहते हैं जैसे चैतन्य भागवत इत्यादि में चैतन्य के सामिक में तो ये वर्णन नहीं गया, तीनों भाई वहां पर थे और गोपाल भट्ट थे। भक्ति रत्नाकर में ऐसा स्पष्ट लिखा है, वो भी प्रमाणित है, तीनों भाई वहां पर उपस्थित थे। महाप्रभु जी ने एक दिन उनसे पूछा, कैसे भट्ट थे, उनको अभिमान था, इस बात का अभिमान था, पर तत्व नारायण कृष्ण नहीं, कृष्ण उसके अंश हैं, भागवत को भी पढ़े हैं, शास्त्र भी पढ़े थे, किंतु उनमें विष्णु पुराण उनमें प्रमाणित माना जाता है, इसलिए उनको यह अभिमान था कि सबसे पर तत्व जो है सत्व की परे अंतिम सीमा ये नारायण तत्व है, ये सर्वस्वर के साथ ही और कृष्ण की यही जो मत जो उनकी लीला है यही सर्वोत्तम है, वो अवतार नहीं लेते। महाप्रभु जी ने उनसे परिहास के रूप में सीधे सरल शब्दों में उनसे पूछा कुछ प्रश्न, लक्ष्मी जी क्यों नारायण को छोड़ करके और कृष्ण के राज इत्यादि में सम्मिलित होने की वासना करती हैं, तुलसी सेवा करने की वासना नहीं लेगा, बतलाओ तो। उन्होंने आज तक ऐसा प्रश्न नहीं पूछा, तो ये कहां ऐसा लिखा है, कस्यानुभाव अश्वनर्दे एवं विस्म है, बड़े सरल स्वभाव से महाप्रभु, किसी के साथ में महाप्रभु जी तर्क नहीं करते थे। काशी में भी आए पंडितों की सभा में उन्होंने अपने आप तर्क नहीं आरंभ किया, उन्होंने तर्कों का कुछ उत्तर दिया, सामंजस्य किया। हमारे साधवन भट्टाचार्य से भी महाप्रभु जी ने कुछ तर्क वितर्क नहीं किया, बल्कि उनके विचारों का बड़े मधुर शब्द स्वाभाविक सरल सरल ढंग से उनका समाधान कर दिया, जिसका उत्तर उन्होंने के पास महाप्रभु ने इसी विषय को प्रचार किया, बड़े बड़े विद्वानों को चरणों में झुका दिया, जगत देकर के आश्चर्य कर दिया। कुछ लोगों के साधु भट्टाचार्य जी, राय रामानंद जी, धर्मरूप सनातन जी, इधर प्रकाशानंद सरस्वती जी, ऐसे लोगों का आकर्षण किया जो जगत अपने आप उनके चरणों में झुला। तो मैंने बताया देखो तत्वतः कृष्ण और नारायण एक ही तत्व है, किंतु रस के द्वारा उनका तारतम्य है, एक ही चंद्र में 16 कलाएं होती हैं, ये कलाओं का अंतर जरूर मानना पड़ेगा, किंतु चंद्र में अंतर है ये नहीं मानना पड़ेगा। उसी तरह से भगवत्ता में तारतम्य है रस के विचार से, तत्वतः विचार वो नहीं है, तत्वतः एक ही तत्व। इसलिए लक्ष्मी जी यदि ऐसा चाहती हैं कृष्ण के रूप पर उनके गुणों पर उनके माध्यम की प्रमुख होती हैं तो ये कोई बात नहीं। और उन्होंने श्रीमद् भागवत के सारे उदाहरण लेकर उनके सामने प्रस्तुत किए, आकर्षित महापुरुष के पत्नी हो उनको सी संप्रदाय से निकाल कर और कृष्ण राधा कृष्ण के प्रेम रस में उनको सारा दूर कर दिया। ये चार व्यक्ति ही महाप्रभु के अंगत हो, ये जो कृपा की गोपाल भट्ट गोस्वामी के ऊपर में जो उस समय के दिग्गज विद्वानों में से ये तीनों भाई थे और उनके ये पुत्र थे वेंकटाचार्य थे, उस समय के प्रसिद्ध विद्वान थे उन लोग। उन्होंने पुस्तक उस समय कारिकाएं की थी, लिखी थी। उसी समय सत्संदर्भ, उसी समय में उन्होंने हमारे गोपाल भट्ट जी की बीज वहीं पर लिखा, उन्होंने महाप्रभु जी के आदेश से उनका संकलन उन्होंने किया, पीछे से यहाँ आकर के जीव गोस्वामी के द्वारा विशेष रूप में पूजा पर वो विषयों का अनुसार में यह सत्संदर्भ किए, किंतु मूल कृति उन्हीं की है। जीव गोस्वामी का भी कर्तित्व है किंतु उन्हीं का मूल है, यह जाता है उन्हीं के पक्ष में जाता है। हरिभक्ति विलास इत्यादि उसका उन्होंने संकलन उन्होंने किया, हमारे सनातन गोस्वामी के लिए शेष संसार, जैसे जैसे गोस्वामी ने कहा विशेष स्वरूप सनातन जी ने जैसा किया उनके आदेश का ही किया। तो उनको कहा वो किस संप्रदाय ने ऐश्वर्य मार्ग के उपासक और उनको राधिया कृष्ण के रस में सारावोर कर दिया, राधा रमण की सेवा अर्पित कर दी, उनके लिए सालग्राम भी बन गए राधा रमन, उनके प्रेम में भी गुरु करके पति पूछ लो, ऐसा कहीं भूतों ने भविष्य की ऐसा नहीं देखा जाता। ये महापुरुष की करुणा उन लोगों ने उपलब्धि की, गोपाल भट्ट जी ने अनुभव किया, उनके ग्रंथों में ये सब चीजें हैं। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को आप लोग जानते ही हैं। इसी तरह से जितने लोगों के ऊपर उन्होंने करुणा की, उन सब लोगों ने उन करुणा की उपलब्धि इसी जन्म में थी और उनके चिरलिंग बन गए। साधु भट्टाचार्य से लेकर के प्रकाशानंद सरस्वती इत्यादि सभी उनके चिरलिंग बन गए, उन्होंने अनुभव किया, कृष्ण लीला में अनुभव की बात नहीं। इसलिए उनकी कृपा से महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं इनकी महिमा का उनकी करुणा का कुछ उत्कर्ष है। दूसरी बात, कृष्ण लीला में ये देखा जाता है, ये जथांग नाम प्रपद जनते ताम तथैव भजाम्यहम्। ताम तथैव भजाम्यहम्, कृष्ण की ऐसी प्रतिज्ञा, जो जैसा भक्ति करेगा उसके अनुरूप ही उसको फल देंगे, उतना ही फल देंगे। महाप्रभु में ये नहीं, महाप्रभु का करुणा का वैशिष्ट्य क्या है, उनकी करुणा का वैशिष्ट्य क्या है, प्रेम तो देते ही, जिसके पास में प्रेम नहीं उसको पात्र दे करके प्रेम भर देते हैं, ये महाप्रभु की विशेष करुणा है। जिनका अंदर में पात्र भी नहीं है उनको पात्र भी दे देते हैं, जिसके तरफ में देखा जहां जहां दूर दर्शन जहां आई से कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम आई से जा, अरे मनुष्यों की तो बात क्या, पशु प्रेम लता जुलम हाथी तक मृग सबको कृष्ण प्रेम दे दिया, हाथी फूटने से करके कृष्ण कृष्ण कहने प्रेम ने दिल हो गए। महापुरुष ये सब देखा उधर ने प्रेम दे दिया, वो बाघ भालू क्या पात्र थे, इसलिए महाप्रभु जी करुणा ये वही कृष्ण ही करुणा वीर न करो, करुणा दान करने के लिए जगत में आए, इसलिए उन्होंने पात्रता दे करके पात्र भी दिया और प्रेम भी दे दिया। और कौन प्रेम किया, जो ब्रह्मा दुर्लभ प्रेम सबा कार्य क्या सबका, ब्रह्मा का जो दुर्लभ प्रेम है, प्रेस्तु अभी असुलभम नर प्रभृति, जो उनके प्रेमी भक्त हैं यहां तक कि उद्धव जो परम प्रेस्त उनके हैं, इन लोगों के लिए दुर्लभ और जगत के जीवों के लिए करुणा का पथ के देवी, इसलिए करुणाया वीर न करो, ये चैतन्य महापुरुष करुणा करने के लिए नहीं देने के लिए ही आए। क्या चीज देने के लिए, जो चीज आज तक बहुत दिनों तक नहीं दी गई। एक कल्प पहले जब चैतन्य महाप्रभु पिछली बार भी कृष्ण के बाद में अपनी लीला का प्रकाश किया उस समय में दिया गया, और तब से अभी तक किसी ने नहीं, कृष्ण लीला भी में नहीं दिया गया। प्रेम का आस्वादन उन्होंने किया, कुछ लताओं पताओं को दिया, किंतु व्यापक रूप में जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने जो सामने आया उसी को कृष्ण प्रेम दिया ऐसा नहीं दिया। गौर नित्यानंद है नहीं, ये सब नीचा चैतन्य महाप्रभु अवतार वह प्रेमी का बनिया है, ये बन जाए जैना भाषे से जीव खार कोटि कल्प जन्म नहीं कहा उद्धार, किंतु चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद देना ही ये सब नाम लेंगे प्रेम दें वह अस्तु था। ये चैतन्य महाप्रभु की करुणा का वैशिष्ट है, इसलिए सबने आवर्तन कलम चैतन्य महापुरुष करना के लिए सबको पात्र भी दिया और भरभर तक के प्रेम दिया, जो ब्रह्मा इत्यादि के लिए, नारद इत्यादि के लिए, यहाँ तक उद्धव के लिए भी जो चीजें संभव नहीं था वो देने के लिए, क्या देने के लिए, इतने दिनों के बाद में जिसको जब एक कभी कांप गए, उनका हाथ नहीं चला, कृष्ण स्वयं आकर के लिख दिया, वो क्या था, हमारा दरल खंडनम मम शिवसि मंडनम देवी पद पल्लव, वो जगह नहीं लिख सके, उनका हृदय कांप गया। राधा जी उनकी तो शक्ति है, राधा जी को कैसे कहेंगे कि अपने चरण हमारे सिर पर रखो, मैं तुम्हारे चरण में अपना शीश नवाता हूं, मुझे क्षमा करो, जगह नहीं लिख सके। इसलिए पहले ये सब चीजें नहीं थी, महाप्रभु के बाद ही आने के बाद हमारे गोस्वामियों ने ऐसा लिखा है, जय कृष्ण क्या करते हैं हमारे प्रबोधानंद सरस्वती जी लिख रहे हैं, जबकि कई बहुत फल का अपमान नित्यम परस्त पुरुषक शिखंड मौले ये कुंज भवन अंगल मार्ग नित्या, ये लिख सकते हैं जय गोस्वामी, जब उतना ही नहीं लिखते तो ये सब क्या लिखेंगे, रूप गोस्वामी और रघुनाथ गोस्वामी की तो बात ही क्या, खास कमरे के लोग ये मंजर यहाँ अपनी है, इसलिए इन लोगों ने चीज जो लिखा है महाप्रभु के पहले किसी की भी हिम्मत नहीं हुई, ऐसा साहस नहीं हुआ जो ऐसे अपना कलम उस पर, रूप गोस्वामी है तो रूप गोस्वामी कैसे कहते हैं, हो श्रीमती राधिका जी के लिए प्रार्थना करते हैं कि देखो आएगा ना काला, उसको मत आने देना यहां, वो स्त्री भेष बना करके सुबल आएगा, सुबल इसलिए उसको सुबल का जो सखा कृष्ण जो स्त्री का भेष बना करके आएगा, कुंज के बातों से रोक देना, कभी खबरदार हमारे यहां मत आने, कृष्ण वहां पर करके हाथ जोड़ रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी दासी का तो राधा जी की तो बात, इसे ये सब प्रेम का प्रचार नहीं था, महाप्रभु के आने के बाद में हुआ, इसी प्रेम को देने के लिए महाप्रभु दिया है, इसलिए यहां पर कह रहे हैं समर्पयि तुम उन्नतोज्वल अर्थं स्वभक्ति श्रियं करुणया करुणापूर्वक उस चीज को जो ब्रह्मत्यादि के लिए हमने पहले बतलाया सबके लिए जो सुलभ नहीं था, वह प्रेम देने के लिए महाप्रभु जी समर्पयि तुम वो करुणा किस चीज को देने के लिए आए, उन्नत उज्ज्वल अर्थान स्वभक्ति स्त्रियन, उन्नत और उज्ज्वल रस, उन्नत क्या है, किस प्रकार से उन्नत, क्या प्रकार के भाव बताए गए हमारे भक्ति के सामने, सिंधु ने बताए गए, शांत को अभी छोड़ देते हैं, दास के सबसे बात सुनने दो, ये सभी उन्नत विशेष करके ब्रज के ये भाव है, वैकुंठ इत्यादि में नहीं है, पहले बताया गया, इनमें भी दास से सप्त सप्त से बासल्य और बासल्य से मधुर सुंदर, किस लिए, सेवा की वासना से, जिसमें जिस प्रेम में ममत्व अधिक है, ममता अति अति सयानुभूत और चित्त को ग्रहित कर देता है, यह भाव जिस में रहेगा ममता अधिक रहेगी वो उन्नत है, इसलिए क्रमशः इनसे मधुर सबसे उन्नत है, दूसरी बात अरस भी किसी प्रकार के रस रहेगा, शांत रस दास रस सत्कर बात्सल्य रस और मधुर को ही उन्नत उज्ज्वल रस कहते हैं, है तो वहां पर सभी रस हैं सुंदर एक एक से मधुर हैं, कृष्ण को तृप्त कर देते हैं, किंतु फिर भी उन्नत उज्ज्वल से संबंधित रहता है, उसको बताते हैं मधुर, वो क्यों है, उसमें सभी हैं, जैसे पंचभूतों का उदाहरण देकर के बतलाया, समय हो रहा है इसलिए 5 बजे का आरती होगी, तो मैं समाप्त कर दूंगा, 10-5 मिनट तो कहते हैं उज्ज्वल किसको कहते हैं, सभी रक्त उज्जवल ही हैं, उन्नत और उज्जवल सभी हैं, चारों एक एक से हैं, किंतु फिर भी जब हम विचार करते हैं रस की दृष्टि से, ममता की दृष्टि से, तो ममता की दृष्टि से सब दस्य की अपेक्षा सख्य और सख्य से अपेक्षा बातल्य, बातल से अवधय ममता मधुर है, गोपियों से कचेतन में चलता मित्र विशेष रूप से यह सब वर्णन किया है। मैं ये सब बतला रहा हूं महाप्रभु की करुणा के लिए, करुणा का अवधारण बतलाने के लिए मैं बतला रहा हूं, चीज को समझ लिया जाए। इसलिए कहते हैं कि उज्ज्वल किसको कहते हैं, कोई चीज निर्मल होने पर उन्नत उज्ज्वल होती है, जैसे कांच निर्मल होता है, सूर्य की रश्मियों का प्रतिबिंब उस पर पड़ता है तो वह झकझक करता है, उसके तरफ हम देख नहीं सकते, तो सभी उन्नत हैं, ये चारों ही निर्मल हैं, ब्रज का जितना भाव है सभी, किंतु फिर भी तात्पर्य ये तात्पर्य किस लिए है, सेवा की वासना जिस रस में प्रतिबिंबित होने पर और वो झकझक करता है उसके ऊपर में निर्भर, कृष्ण की सेवा की वासना यही मूल चीज है भक्ति, यही जीवों का अनुबंधी भाव है, जीव में भी अणु रूप में आच्छादित रूप में लैटेंट रूप में ये है, और नित्य मुक्तों में कृष्ण के परिसरों में तो वो प्रस्फुटित रूप में, विशेष करके गोपियों में प्रस्फुटित से भी प्रस्फुटित सुगंधित